ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाली उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार के लिए उद्यमियों और व्यवसायियों की मांगों को संबोधित करने की प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की प्रतिबद्धता। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में विभिन्न ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए 860 नेपाली नागरिकों का उद्धार किए जाने की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। शिक्षा परामर्श व्यवसायियों के लिए निर्धारित सुरक्षा जमानत राशि की व्यवस्था से पीछे न हटने की शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल की स्पष्ट घोषणा। और अमेरिका ने भारत चीन सहित 60 व्यापारिक साझेदार देशों पर नए आयात शुल्क लगाए जाने का लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार नेपाली उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार के लिए उद्यमियों और व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। निर्यातोन्मुख उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने अमेरिका के नए सुरक्षा प्रमाणन नियम के प्रभावित कालीन निर्यातकों की मांग पर कूटनीतिक पहल करने और ऊन के क्वारंटीन प्रमाणन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कालीन विकास बोर्ड गठन के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख भी जताया। बैठक में प्लाईवुड, पश्मीना और डॉग च्यू उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी कानूनी और नीतिगत बाधाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री शाह ने कच्चे माल के निर्यात को हतोत्साहित करने, पश्मीना क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और डॉग च्यू उद्योग की मांगों पर आवश्यक अध्ययन कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। परराष्ट्र मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट वितरण में आई तकनीकी समस्या जल्द दूर कर ली जाएगी। मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री ने बताया कि नई प्रणाली लागू होने के बाद कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण पासपोर्ट वितरण की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन अब तक 8,260 पासपोर्ट छापे जा चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 1,300 पासपोर्ट मुद्रित किए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न ऑनलाइन ठगी केंद्रों से 860 नेपाली नागरिकों का उद्धार किया है। इनमें 733 कंबोडिया, 113 म्यांमार, 8 लाओस और 6 थाईलैंड से वापस लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कंबोडिया की जेलों में बंद 49 नेपाली नागरिकों की स्वदेश वापसी के प्रयास भी जारी हैं। गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने कहा है कि नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में रहने वाले नेपाली नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय सभा की समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सीमा पर बढ़ती मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध योजना लागू की जा रही है। साथ ही सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास भी जारी हैं। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल ने स्पष्ट किया है कि शैक्षिक परामर्श व्यवसायियों के लिए निर्धारित 25 लाख रुपए की सुरक्षा जमा राशि की व्यवस्था वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान व्यवसायियों के सुझावों के आधार पर नए नियमों के तहत लागू किया गया है और सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं कर रही है। मंत्री पोखरियाल ने कहा कि विद्यालय शिक्षा कानून जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर संबंधित पक्षों से पूर्व परामर्श किया जाएगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों को स्वायत्त और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त बनाने पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी की व्यवस्था जारी रहने की बात कही और बताया कि डॉ. गोविंद केसी के साथ विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर अनौपचारिक संवाद जारी है। नेपाल और कोरिया गणराज्य के बीच कृषि तथा कानूनी सूचना सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1,18,00,000 अमेरिकी डॉलर की 2 अनुदान सहायता परियोजनाओं पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते के तहत 1,00,00,000 डॉलर की लागत से कृषि विकास तथा कानूनी और विधायकी अभिलेखों के लिए एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा ताकि आम नागरिकों की इन तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। समझौता पत्रों पर नेपाल के लिए कोरियाई राजदूत पार्क थेयंग और अर्थ मंत्रालय के सचिव घनश्याम उपाध्याय ने हस्ताक्षर किए। अधिकार संपन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति ने कहा है कि बागमती नदी किनारे से हटाई गई अव्यवस्थित बस्तियों की भूमि को खुले सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। समिति के अनुसार इन स्थानों पर हरित क्षेत्र, खेल मैदान, पैदल मार्ग और नदी पुनर्जीवन से जुड़ी आधारभूत संरचनाएं विकसित की जाएंगी, जबकि स्थायी कंक्रीट निर्माण नहीं किया जाएगा। समिति ने बताया कि बलखू, बंशीघाट, थापाथली, गैरीगांव, सीनामंगल और शंखमूल सहित अधिकांश क्षेत्रों में मलबा हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। सरकार की विजन काठमांडू 2040 योजना के तहत नदी गलियारों में पार्क, आधारभूत संरचना, ठोस कचरा प्रबंधन, नदी को सीवेज मुक्त बनाने और हरित क्षेत्र विकसित करने के कार्यक्रम आगे बढ़ाए जाएंगे। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा है कि हमारे पूर्वजों के त्याग, बलिदान, साहस और वीरता के कारण ही आज हम नेपाली होने पर गर्व के साथ सिर ऊंचा करके खड़े हो सकते हैं। आज राष्ट्रीय विभूति भीमसेन थापा की 225वीं जयंती तथा पुरस्कार एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि इतिहास के सकारात्मक पक्षों का अनुसरण करके ही वर्तमान के प्रति न्याय किया जा सकता है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने बाजुरा जिले के बड़ी मालिका क्षेत्र में तत्काल टेलीफोन और इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश किया है। मंत्रालय में आज हुई बैठक में नेपाल टेलीकॉम ने सावन महीने के भीतर टेलीफोन सेवा शुरू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। देश के विभिन्न स्थानों पर दूरसंचार मोबाइल टावरों के निर्माण के विषय में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के साथ भी निरंतर समन्वय होने की बात बताई। बड़ी मालिका सहित पर्यटन एवं दुर्गम क्षेत्रों में यथाशीघ्र टेलीफोन और इंटरनेट सेवा का विस्तार करने के संबंध में संचार मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने आज प्रधानमंत्री के सूचना संचार एवं प्रविधि सलाहकार विवेक मिश्र के साथ भी चर्चा की। इस दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी यानी बेटिंग एप्स पर रोक लगाने तथा ऑनलाइन ठगी पर नियंत्रण के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। युवा श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव ने कहा है कि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र में लागू मौजूदा नीतियों को व्यवस्थित करते हुए एक व्यावहारिक नीति लागू की जाएगी। श्रम मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा आयोजित 5वें नेपाल फोरम ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री यादव ने कहा कि वर्ष 2015 से लागू फ्री वीजा फ्री टिकट नीति केवल कागजों तक सीमित रह गई है, इसलिए इसे व्यावहारिक और प्रभावी बनाने के लिए इसकी समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री यादव ने बताया कि वैदेशिक रोजगार आईन 2064 के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और निगरानी योग्य बनाने के लिए इसे पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। इस बीच प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए युवा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वैदेशिक रोजगार विभाग के माध्यम से ujuri.gov.in नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण बाजुरा जिले की बड़ी मालिका नगरपालिका 9 के सेलगार्ड क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 16 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पुलिस के अनुसार प्रभावित परिवारों को उनके आवश्यक सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन से अवरुद्ध सांफे मारतटी सड़क मार्ग से मलबा हटाए जाने के बाद आज यातायात फिर से बहाल कर दिया गया है। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध वित्तीय लेनदेन में संलिप्त 2,00,000 से अधिक वेबसाइटों और मोबाइल एप्स को बंद कर दिया है। प्राधिकरण के अनुसार फीफा विश्व कप के बाद से अब तक 2,23,568 वेबसाइटों और एप्स पर कार्रवाई की गई है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और ठगी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्राधिकरण ने एक अलग कार्यदल भी गठित किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने जबरन श्रम से जुड़े आयात पर सख्ती के तहत भारत, चीन, यूरोपीय संघ और कनाडा सहित 60 व्यापारिक साझेदारों पर नए आयात शुल्क लागू करने की घोषणा की है। नए शुल्क आज से प्रभावी होंगे और इनकी दर 10 से 12.5% के बीच होगी। अमेरिका का कहना है कि ये देश जबरन मजदूरी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं, इसलिए ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार जिन देशों ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है या ऐसा करने का वादा किया है उन पर 10% शुल्क लगाया जाएगा। इनमें भारत, कनाडा, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन शामिल हैं। वहीं चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों पर 12.5% शुल्क लागू होगा। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों पर पहले से लागू शुल्क तथा कुछ ऊर्जा उत्पादों, उर्वरकों और मुक्त व्यापार समझौतों के तहत आने वाले सामानों को इससे छूट दी गई है। बता दें कि जबरन श्रम से जुड़े होने का अर्थ है कि किसी वस्तु या उत्पाद के निर्माण में मजदूरों से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कराया गया हो। इसमें लोगों को धमकी, कर्ज, हिंसा, दस्तावेज जब्त करने, वेतन न देने या अन्य प्रकार के दबाव के जरिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसे अंग्रेजी में फोर्स्ड लेबर कहा जाता है। भारत में हिमाचल प्रदेश के पांगी और लाहौल स्पीति जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र कड़ू नाला में आज हुए भूस्खलन से 13 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर इस घटना पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने उपायुक्त लाहौल एवं स्पीति से बात कर दोनों घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि उपायुक्त स्वयं घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाली उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार के लिए उद्यमियों और व्यवसायियों की मांगों को संबोधित करने की प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की प्रतिबद्धता। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में विभिन्न ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए 860 नेपाली नागरिकों का उद्धार किए जाने की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। शिक्षा परामर्श व्यवसायियों के लिए निर्धारित सुरक्षा जमानत राशि की व्यवस्था से पीछे न हटने की शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल की स्पष्ट घोषणा। और अमेरिका ने भारत, चीन सहित 60 व्यापारिक साझेदारों पर नए आयात शुल्क लगाए जाने का लिया फैसला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10:00 के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11:00 आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।